हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 6। भगवान के श्रीमुख से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। आज भगवान अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो वास्तव में हमारे समस्त दुखों का कारण है। भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। 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 शब्दोकात बंधुर आत्मा, बंधु का मतलब होता है मित्र और आत्मा को यहाँ पर मन को आत्मा कहा गया है। बंधुर आत्मा मन आत्माना यानी जीव का। अब दूसरा जो आत्मा है ना वो आत्मा को कहा गया है, ठीक है। उस आत्मा का मन जो है वो मित्र होता है। तस्य उसका, ये न जिससे, आत्मा यानी मन एव निश्चय ही आत्मना अर्थात जीव आत्मा के द्वारा जीता है। यानी शुरू वाली लाइन में क्या बता रहा है कि मतलब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा येनात्मैवात्मना जितः। जिस जीव आत्मा ने अपने मन को जीत लिया है, जितः मना जीत लिया है, तो वो मन जो है उसका मित्र बन जाता है। और आगे भगवान बताते अनात्मनः, जो मन को वश में नहीं कर पाया। अनात्मनः जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया है उसका तू मना, लेकिन यानी कि जिसने जीत लिया है वो तो मित्र है, लेकिन जिसने नहीं जीता है शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव। शत्रुत्वे मतलब शत्रुता के कारण, वर्तेत यानी बना रहता है, आत्मैव वही मन। एव का मतलब होता है वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु, शत्रुवत की भांति वो आपके साथ व्यवहार करेगा। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है वह उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश करने में किए, मन को वश किए बगैर योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना। यानी कि आप अभ्यास कर रहे हो, आसन तो कर रहे हो योग के, अष्टांग योग के अलग अलग, परंतु मन यदि विचलित है, ये खाऊं वो खाऊं इसे इंद्रिय तृप्ति करूं, तो फिर वो सिर्फ समय को नष्ट करना। सबसे पहले क्या करना है, मन को वश में करना। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता है वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। सबसे बड़ा दुश्मन है और आप उसके साथ रह रहे हो, सोचो तो सही वो आपका कितना बेड़ा गर्क कर सकता है। और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहेगा, अविजित मतलब जब तक मन को जीता नहीं है तब तक तो वो भगवान ने क्या कहा, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता मैव शत्रुवत। अगर आपने उसको जीता नहीं है तो वो इतना आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा। तो यहाँ वल्लभ प्रभुपाद बोलते हैं, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है और जीव ने मन को अपना स्वामी बना लिया है तो मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है, तो इसके कारण जीव को उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। मन जीत लिया, समझो जग जीत लिया, और फिर भगवान की आज्ञा, मन की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, फिर भगवान की आज्ञाओं का पालन। भगवान का जो हृदय में बैठे हुए हैं वो हृदय में आपको ऐसी सफूर्ति देते हैं और उसकी ही आज्ञाओं का पालन करते हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा में भेंट, परमात्मा के साथ भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात श्री कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि ये योग के आसन के विषय में भगवान बता रहे हैं ना कि अगर आप योग आरूढ़स्य स्थिति पर पहुंचोगे तो सबसे पहले कल हमें क्या बताया कि आप मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मन जिसने अपने मन की सहायता से आप ऊपर भी जा सकते हो, उद्धार भी कर सकते हो और मन की सहायता से नीचे भी जा सकते हो। अगर मन को जीत लिया तो वो आपका दोस्त बनेगा और अगर नहीं जीता तो वो आपका शत्रु बनेगा। यानी कि योग अभ्यास में मन को जीतना अत्यधिक आवश्यक है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट तथा उनकी आज्ञा का पालन है। योग ये है कि हम भगवान की साथ भेंट करें और भगवान की आज्ञाओं का पालन करें, मन की आज्ञाओं का पालन ना करें। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए अत्यंत ही सरल एक लास्ट में बात बताते हैं कि जो व्यक्ति साक्षात भगवान कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। उसको फिर योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति करता है वो तो वैसे ही भगवान की ही आज्ञाओं का पालन करता है, मन की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादा सहग ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचाकल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 5 में भगवान ने बताया कि मन के द्वारा मन के सहायता से आप अपना उद्धार कर सकते हो और मन ही आपके नीचे गिरने का पतन का कारण बन सकता है। ये मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। और मित्र कब है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कब वो आपका मित्र बनता है, जब बंधुरात्मा आत्मा मनस्तस्य येन आत्मैवात्मनः जितः, जिसने मन को जीत लिया है वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अगर नहीं जीतता है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, और आपके साथ शत्रु का व्यवहार करेगा। वास्तव में भक्तों, इस संसार में जितनी भी बलवान वस्तुएं हैं, अगर हमें उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता तो वो हमारे लिए हानिकारक बनेंगे। जैसे यदि हम आग को कंट्रोल करना नहीं जानते तो क्या होगा, वो हमारे लिए हानिकारक बनेगी। लेकिन यदि हमें आग पर कंट्रोल है तो हम उससे बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, उसको कुक उससे अच्छी कुकिंग कर सकते हैं और भी दूसरी चीजें जो हमारे लिए कारामंद होती है, हमारे लिए फायदेमंद होती है, वो हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से नाइफ, अगर नाइफ को इस्तेमाल करना नहीं आता है तो फिर वो हमारे लिए हमेशा दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर हम उसको सही तरह से यूज करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, तो उससे हम बहुत अच्छी कटिंग कर सकते हैं और भी कोई कार्य कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं उसको अपने ऑर्डर के अनुसार, तो वो हमारे लिए लाभदायक हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल करना नहीं जानते हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेट लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान हमें प्राप्त होगा उसके कारण। तो उसी प्रकार मन भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो मन तब शक्तिशाली है जब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या होगा, तब भी शक्तिशाली है जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, और तब भी शक्तिशाली है जब हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। जब वो कंट्रोल किया जाएगा तो वो हमारे फ्रेंड की तरह हमारी आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो हमारा दुश्मन हो जाएगा और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ड्राइविंग करता है गाड़ी में, तो गाड़ी बहुत अच्छा कार्य कर सकती है, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि किसी ने शराब पिया हुआ है और वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने कार को, तो क्या होगा, खतरनाक स्थिति आ जाएगी और वो गाड़ी से हम कार से एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारी दुर्गति हो जाएगी, हो सकता है मर जाए। सिमिलरली मन भी मित्र है या शत्रु है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना कंट्रोल किया है। भगवान ने यहाँ पर कंट्रोल करने की विधि तो नहीं बताई, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तब अर्जुन ये सवाल करेगा, भगवान से कहेगा, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवः दृढ़म् यस्याहम् अनुग्रहामि वायु रिवा सुदिष्क कि इसको कंट्रोल करना, मन इतना चंचल है, इतना बलवान है, इतना स्ट्रोंग है, इतना रेस्टलेस है कि इसको वश में करना मुझे बहुत कठिन लगता है। वायु को वश में करना फिर भी सहज लगता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना अत्यंत ही दुष्कर लग रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी भले ही जितना कंट्रोल करना कठिन हो, लेकिन अगर तुमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, अनात्मनस्तु शत्रुत्व, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। शत्रु वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, शत्रु की तरह व्यवहार करेगा। वास्तव में मन स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। जो भले भक्ति में नहीं होते हैं जीव, उनको भी ये पता होता है कि अगर मन जो है वही हमारे दुखों का मेन कारण होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसा, हमने ऐसा अनुभव किया होता है कि हर कोई चीज हमारे पास हो, सुख हो, सुविधा हो, और हमारी सारी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और मन में वो बात खटक गई तो फिर रोना आ जाता है, दुख होता है, परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन डिस्टर्ब है। और कभी कभी ऐसा होता है, दुख के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यदि मन को कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम संतुष्टि उस टाइम पर महसूस करते हैं। यानी कि ये मन है जो स्वर्ग को नरक और नरक में स्वर्ग में चेंज कर देता है। ये मन की उपज है। दुख और सुख वास्तव में इस संसार में नहीं, हमारे मन में है। तो ये संकल्प और विकल्प तो मन के स्वभाव है। मन सदैव कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है, कुछ चीजों को रिजेक्ट करता है, कुछ चीजों को स्वीकार करता है, कुछ चीजों को अस्वीकार करता है। अगर कोई वस्तु इंद्र तृप्ति के लिए उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी इंद्र तृप्ति के लिए परफेक्ट है तो उसको स्वीकार करता है और आनंदित होता है। लेकिन यदि उसको कोई वस्तु ऐसा लगता है कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती है तो फिर उसको अस्वीकार करता है। उसी के कारण हमारा पूरा जीवन अप एंड डाउन में लगा रहता है। हमें इन द्वंद्वों को, इन ड्यूअलिटी को कंट्रोल करना सीखना है। यही श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम शिक्षा है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में प्रथम शिक्षा दी क्या, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो अनित्याः तांस्थिति क्षस्व भारत। हे भारत, इस संसार में जो सुख और दुख है वो तो सर्दी और गर्मी की तरह आते ही रहते हैं। इसमें कुछ शाश्वत नहीं है, ये केवल इंद्रिय बोध के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो क्या करना है, इसे तुम्हें कंट्रोल करना है, उसको बर्दाश्त करना सीखना है। वास्तव में ये मन जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा हर एक वस्तु के लिए चिल्लाता है, चीखता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये पसंद है, वो पसंद है, ये लेकर दो, वो नहीं पसंद है, तो उसके टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि नहीं, ये आपके लिए हानिकारक है, हम आपको नहीं लेकर दे सकते, है ना। अगर कोई बच्चा फायर की जिद करे, गन की जिद करे, या फिर इस तरह की, तो हमें पता है हम उसको मना करेंगे। उसी तरह से मन भी अगर हमारे लिए हानिकारक वस्तुओं का चयन करता है तो हमें मन को बोलना चाहिए, तुम भले बोलते रहो और चाहे कितना ही तुम बोलो ये चाहिए, वो चाहिए, परंतु हम आपकी हर बात को नहीं स्वीकार करेंगे। जिस तरह बच्चे को हम बोलते हैं, देखो बेटा ये चीज आपके लिए हानिकारक है, हम आपको नहीं दे सकते, उसी तरह मन को भी हमें बताना पड़ेगा, ओ मिस्टर माइंड, यू मे से वॉट एवर यू लाइक और नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू सेकंड यू, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, डोंट ट्रबल मी, कि आप मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें हर एक चीज जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए, अगर मन कंट्रोल होगा तभी तो बात मानेगा। अब वास्तव में भक्तों, मन पता है कैसे, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, मन भी एक टेररिस्ट की तरह है। हम सदैव बाहर के आतंकवादियों के विषय में बात करते हैं, परंतु बाहर के टेररिस्ट से कई गुना भयंकर टेररिस्ट जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो सदैव हमें आज्ञा देता है कि मुझे इस तरह से तृप्त करो, मुझे इस तरह से तृप्त करो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और हम विवश हो जाते हैं उसकी मांगों को पूरा करने के लिए। मन बहुत बलवान है, वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर देता है, हमारी बुद्धि को हरण कर देता है, हमारा पूरा जीवन। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें ना, तो सदैव मन के द्वारा हम आतंक का शिकार हुए हैं, टेररिस्ट किया, टेरर हमें सदैव मन ने तपा है, बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिए हैं। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सके, इसलिए जब जब मन ने जो जो मांग किया हमने उसको पूरा किया। जैसे जब टेररिस्ट किसी प्लेन को हाईजेक कर लेते हैं तो वो जो भी मांगते हैं, जैसे किसी को धन चाहिए होता है तो धन भी मांगते हैं, या फिर कोई और अपने साथियों को छुड़ाना चाहते हैं, जो जो मांगे करते हैं तो गवर्नमेंट उसको दे देती है क्योंकि उसको देना पड़ता है। उसी तरह मन भी डिमांड करता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं होती कि हम कैसे मन को रोकें। अर्थात मेन यहाँ पर भगवान बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं जानते कि मन को किस प्रकार से कंट्रोल करना है तो ये मन हमें बहुत सताता है, हमारे दुखों का कारण बनता है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक कथा आती है अवंती ब्राह्मण की, बहुत ही सुंदर है। ये एक शहर है अवंतीपुर, उसमें एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम अवंती ब्राह्मण है। तो बहुत बहुत धन होता है उसके पास, लेकिन वो इतना कंजूस होता है कि वो धन को खर्च नहीं करता है, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने लिए, ना कोई ना धार्मिक यज्ञ करता है, ना कोई धार्मिक कुछ भी नहीं करता है, धन को जमा करता है। बस उसकी एक ईगरनेस, लालच उसको इतना हो जाता है कि वो बस धन को इकट्ठा करते रहता है। तो इस तरह से हर कोई मतलब हर किसी को बहुत ज्यादा दुखी करता है, हर किसी को भला बुरा बोलता है, और जो भी होते हैं ना उन सब लोग उससे बहुत तंग आ गए होते हैं। तो क्योंकि सब लोग उससे तंग होते हैं तो फिर सब उसको शाप वगैरह देते हैं, दिल में उससे दुखी होते हैं, द्वेष करते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि उसका धन खत्म हो जाता है, कुछ डाकू चोरी करके जले जाते हैं, और कुछ आग में जल जाता है उसका गोडाउन वगैरह, और कुछ इनकम टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ले लेती है। इस तरह से उसका सब कुछ धन खत्म हो गया, और क्योंकि उसने सारे लोग को टॉर्चर किया होता है, सब लोग को निग्लेक्ट किया होता है, तो अब क्या होता है कि सारे लोग उसको निग्लेक्ट करना चाहते हैं। मतलब हर कोई उससे नफरत करता है, हर कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। मतलब सब घर वाले, फैमिली वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब उसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं। वहां भागवतम में बहुत ही भयंकर उसके भाषण में बताया गया। तो वो उसको बहुत दुख होता है, रोने लगता है, सोचता है मैंने इतना सारा धन कमाया, मैंने उससे ना खुद एंजॉय किया ना धर्म किया, अब मृत्यु के समय तो भले मैंने कितना ही धन कमाया हो, धन तो मेरे साथ चलेगा नहीं, और मृत्यु के समय तो छोड़ो अभी से ही मुझे छोड़ के चला गया। तो उसको बहुत अपने ऊपर दुख हो रहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। सोचा कि अब तो मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा, पिछले कर्मों की, पिछले जन्मों की कोई सुकृति थी जिसके कारण उसे लगा कि सब मुझ पर भगवान ने कृपा की है। भगवान मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, जिसके प्रति हम आसक्ति रखते हैं वो हमारे दुख का कारण होता है, इसीलिए सारी आसक्तियां खत्म हो गई, इसीलिए अब मुझे संतुष्ट रहना है। फिर वो क्या होता है, सन्यासी बन जाता है। तो जो लोग उसे पहले जानते थे, कोई भी वो बड़े सन्यासी भी बन गया होता है, फिर भी कोई उसको सीरियस नहीं लेता, सब उसको इंसल्ट करते हैं, सब दुखी करते हैं। जो साधारण लोग भी होते हैं वो भी जानते हैं कि कितना कंजूस था, लालची था, देखो भगवान ने उसके साथ कैसा किया, कोई थूक के जाता है, कोई उसको सब कोई उसको एब्यूज वर्ड्स बोलते हैं, सब हार्ट करते हैं उसको, और सब उसके साथ है ना इसी तरह का व्यवहार करते हैं, मगर वो किसी से भी कंप्लेन नहीं करता है। तो वो सह रहा होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। एक दिन वो एक शुद्ध वैष्णव से मिलता है और उससे कहता है कि मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दुखों का कारण क्या है, क्या जो मेरे ग्रह अच्छे नहीं है, मेरा टाइम अच्छा नहीं है, या फिर जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनके कारण मुझे दुख मिल रहा है, मेरी फैमिली मेंबर्स के द्वारा मुझे दुख मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स के द्वारा मुझे दुख मिल रहा है, मतलब मुझे दुख किसके द्वारा मिला है। तो फिर उस वैष्णव ने कहा, तुम खुद थोड़ा कंक्लूजन निकालो, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें किसके द्वारा दुख मिल रहा है। तब उसने कहा कि माई ओन माइंड इज द कॉज ऑफ माई सफरिंग, मेरा अपना मन ही मेरे दुखों का कारण है, क्योंकि मन कोई ना कोई इच्छा करता रहता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण वो किसी एक गुण में रहकर कार्य करता है, और बद्ध जीव जो कि प्रकृति के द्वारा बद्ध होता है और मन और इंद्रिय की तृप्ति के लिए इच्छा करता है, और इंद्रिय तृप्ति के प्रोसेस के कारण ही भवबंधन होता है, जिसके कारण जीव को दुख भोगना पड़ता है। तो वास्तव में जितने भी दुख हमें मिल रहे हैं वो अपने ही मन के कारण होते हैं, तो हम किसी से क्या कंप्लेन करें, है ना। जैसे अगर हम कभी खाना खा रहे होते हो और जीभ हमारी हमारे दांत के बीच में अटक जाए, तो फिर हम किसको दोष दें, ना खाने को दोष देंगे ना डाइनिंग टेबल को दे, किसको कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी कष्ट हमें मिला वो हमारे अपने कारण। उसी तरह संसार में हमें जो भी दुख मिल रहा है तो वो हमारे अपने ही मन के कारण मिल रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा अगर तुमने मन को जीता नहीं अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वही है, वही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण बनेगा। तो उस समय अवंती ब्राह्मण ने एक अत्यंत ही सुंदर श्लोक उच्चारण किया, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें वे कहते हैं एतांस आस्थाय परात्मनिष्ठा, कि अब मैंने ये निष्ठा कर ली है, ये निश्चय कर लिया है कि, क्योंकि जब तक हृदय के अंदर निष्ठा नहीं होगी, निश्चय नहीं होगा, तब फिर हम फिर से वही कार्य करेंगे। लेकिन उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, पूर्ववत मेर में है महर्षि भी, कि मैं अब भगवान के श्री चरण में उन शुद्ध भक्तों के पदजनों का अनुसरण करूंगा। पूर्ववत मेरा मही महर्षि भी, जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनके चरण कमलों का अनुसरण करूंगा, और इस तरह से क्या होगा, मुझे निश्चय है एतांस आस्थाय परात्मनिष्ठा, मुझे पूरा निश्चय है कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं पार कर जाऊंगा जिस उस जगह को, उस समुद्र को, उस भव समुद्र को, भव सागर को, जिसको दुरंत पारम, उसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि मैं शुद्ध भक्तों के सानिध्य में उनके पदचिन्हों का अनुसरण करके मैं प्रयास करूंगा सच्ची निष्ठा के साथ, तो मैं अहम तरिष्यन्ति, तरिष्यामि का मतलब होता है मैं पार करूंगा उस दुरंत सागर को, तमो मुकुंदांग्री निशेवसेवया, और उन भक्तों की आज्ञा के अनुसार तमो मुकुंदा, मैं मुकुंद भगवान, मुकुंदांग्री मतलब मुकुंद भगवान के श्री चरणों की, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों निशेवया सेवा करूंगा, भक्तों का अनुगमन करूंगा, और इस तरह से मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं जरूर इस भवसागर को पार कर लूंगा। वास्तव में भक्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको संन्यास मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब संन्यास दीक्षा देते हैं तब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि अब उसे ये निष्ठा हो जाती है कि इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है इस भवसागर से पार करने का, कि भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मन को कंट्रोल करना कैसे है, निश्चय करो कि शुद्ध भक्तों के का अनुसरण करके, उनके पद चिन्हों को अनुसरण करके और भगवान की भक्ति करके ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन को कंट्रोल करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जैसे श्री प्रभुपाद ने बताया, संन्यास का रियल पर्पस जो है वो भक्ति में उन्नति है, भगवान के साथ अपने रिलेशन को प्राप्त करना है। सिर्फ मन को कंट्रोल करना ही संन्यास का मतलब नहीं है। श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, और शुद्ध भक्त यही करता है। क्यों? क्योंकि उसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके पद चिन्हों के द्वारा उनका अनुसरण करके वो भगवान की भक्ति करता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है अवंती ब्राह्मण का, कि मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, केवल और केवल डिवोशनल सर्विस से, है ना, केवल और केवल कृष्ण भावनामृत से ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अमरेश ऋषि कैसे बोलते हैं, सवय मना कृष्ण पदारविंदे, मैंने अपने मन को कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर दिया, फिर तो भौतिक वस्तुएं मुझे अच्छी ही नहीं लगती, उनकी ओर देखने से भी नफरत होती है। तो वास्तव में रूल क्या है मन को जीतने के लिए, शास्त्र कहता है येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, किसी भी प्रकार से बाय हुक और क्रुक मन को कहाँ लगाना है, भगवान के श्री चरणों में। येन केन प्रकारे मनः कृष्ण निवेशयत्, भगवान की सेवा में यदि मन को लगा दिया तो शास्त्र कहता है सर्व विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरा। शास्त्रों में तो बहुत सारे विधि और निषेध बताए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए, लेकिन एतयोर एव किंकरा, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन, सब उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। और एतयोर, यहाँ बताया सर्वे विधि निषेधासु एतयोर एव किंकरा, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस मेन रूल के किंकर हैं, उसके गुलाम हैं, उसके सेवक हैं। क्या मेन रूल है, ये न कहना प्रकारे मन कृष्ण निवेशता, कि अपने मन को किसी न किसी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। इसे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, बार बार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अपने मन को मेरे अंदर लगाओ। अगर ऐसा करोगे तो मामे वैश्यति सत्यम ते प्रतिदाने प्रियोसि में, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम अवश्य मेरे पास आओगे, तुम मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और यदि तुमने मेरे प्रेम का बदला प्रेम से दिया, है ना, अगर अपने मन को मुझ में लगाया तो मैं तुम्हें अपने धाम में लेकर जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।